हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। उनको ये पूछने पर मनस्वी थोड़े गुस्से में बोली, गलत काम नहीं, बहुत ही बड़ा गुनाह किया है उसने। वो किसी और की बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक शादीशुदा लड़की के पीछे। और जब उस लड़की ने मना किया तो आपको पता है, उसने और लड़की को किडनैप कर लिया और फिर उसके पति और लड़की दोनों को जान से मारने की भी कोशिश की। इन सब में पता है, वो लड़की इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हो गई कि 3 दिन तक कोमा में थी। मनस्वी की बातें सुनकर उसके सामने खड़े मिस्टर सहगल का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया और आंखें भी हैरानी से बड़ी हो गईं। वो बोले, क्या इतना सब हो गया? नहीं विराज, ये सब नहीं कर सकता, वो तो इतना समझदार लड़का है, और वैसे भी अकेले उसने ये सब कैसे किया होगा। किसी भी माँ बाप को कभी अपने बच्चे गलत नहीं लगते, इसलिए आपका भरोसा ना कर पाना नॉर्मल है, लेकिन सच यही है, बाकी आप अपने सोर्सेस से भी पता कर सकते हैं। मनस्वी ने ये बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एकदम सीरियस होकर बोली, जिससे उस पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं बची। मिस्टर सहगल कुछ नहीं बोले और चुपचाप अपना सिर हिलाकर उस कमरे से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद मनस्वी इस बारे में ही सोचने लगी कि आखिर मिस्टर सहगल की पत्नी कहाँ हो सकती है, और अगर उन्हें विराज के बारे में पता चल गया था तो क्या आदित्य ने ही उन्हें भी कैद कर लिया है। वो इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन टोन रिंग हुई। मनस्वी ने अपना मोबाइल उठाकर देखा तो उस पर मिस्टर सहगल के असिस्टेंट ने उन्हें उनकी पत्नी का फोटो और मोबाइल नंबर मेल किया था। वो देखने के बाद उसने अपने पीछे खड़ी लड़की को अपने हाथ में पकड़ा हुआ आईपैड देते हुए कहा, रिया जाओ सबसे पहले मिसेस सहगल के फ़ोन की लास्ट लोकेशन पता करो। ओके मैम, उस लड़की ने इतना ही कहा और मनस्वी के हाथ से वो आईपैड लेकर वहां से चली गई। उसके वहां से जाने के बाद मनस्वी इस बारे में ही सोचने लगी। उसे कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा था, उसे इस बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था। उसे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था कि विराज कहां पर हो सकता है और आदित्य ने उसे कहां पर रखा होगा। ऐसे में उसकी माँ भी गायब हो गई। ये बात पता चलने के बाद मनस्वी अब थोड़ा सा टेंशन में आ गई थी, ये सोचकर कि अगर इस मामले में पुलिस इन्वॉल्व हो गई तो फिर आदित्य को भारी पड़ सकता है, और इसीलिए उसने उसे वॉर्न करने की सोची। उसने आदित्य का तो नहीं लेकिन अनय का नंबर डायल किया, जो कि इस वक्त आदित्य के साथ हॉस्पिटल में था। वो दोनों सुनैना को लेकर वहां पर आए थे। मनस्वी को इस बारे में कुछ भी भनक नहीं थी, इसलिए जब अनय के मोबाइल फोन पर रिंग हुआ तो उसने अपनी जेब से मोबाइल फोन निकाल कर देखा, लेकिन आदित्य को अपने सामने परेशान खड़ा देखकर उसने मनस्वी का फोन कॉल रिसीव नहीं किया और कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके इस तरह कॉल डिस्कनेक्ट करने पर मनस्वी थोड़ी सी उदास हो गई। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही मनस्वी ने एकदम धीमी आवाज में कहा, हाँ मुझे वैसे भी पता है कि मैं अनय के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हूं। ये सोचकर उसने गहरी सांस खींची, लेकिन पिछले दिनों उनके बीच जो भी बातें हुई हैं उसके बाद से उसे ये लगने लगा था कि शायद अब उनके बीच सब कुछ बदल जाएगा, और पहले से उनका रिश्ता भी काफ़ी चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी अनय ने उसकी कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उसे फिर से इन सब बातों को लेकर डाउट होने लगा। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके मोबाइल फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन मैसेज पॉपअप हुआ। उसने देखा तो वो अनय का टेक्स्ट मैसेज था जिस पर लिखा था, टॉक टू यू लेटर। इसका मतलब वो समझ गई कि जरूर वो किसी ऐसी जगह पर है जहां वो उससे बात नहीं कर सकता। उसने कॉल करके इस बारे में इन्फॉर्म किया कि वो बाद में कॉल पर बात करेगा, तो फिर उसे थोड़ा सा अच्छा फील हुआ। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में आदित्य अपने हाथ पीछे की तरफ बांधकर टेंशन में इधर से उधर टहल रहा है। सुनैना को वहां स्पेशल वार्ड में एडमिट कर लिया गया है, लेकिन डॉक्टर अब तक नहीं आए हैं उसका चेकअप करने के लिए, क्योंकि जब वो लोग हॉस्पिटल आए तब डॉक्टर अपने केबिन में ही नहीं थे। लेकिन जैसे ही सुनैना बेहोश वहां पर आई और उसे एडमिट किया गया तो अनय के कहने पर डॉक्टर को तुरंत ही कॉल करके हॉस्पिटल बुलाया गया, क्योंकि जो डॉक्टर उसका केस अटेंड कर रहे थे वही आदित्य चाहता था कि सुनैना का ट्रीटमेंट करे, कोई और नहीं, क्योंकि सुनैना को लेकर वो कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहता था, इसीलिए वो बहुत परेशान था। उसने वहां पर आते जाते हुए स्टाफ को देखकर थोड़ी नाराजगी से पूछा, ये कैसी लापरवाही है, डॉक्टर अब तक क्यों नहीं आए? आप लोगों को पता है मेरी बीवी बेहोश है, और अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं किसी को भी छोड़ूंगा नहीं, किसी को भी नहीं। उसे इस तरह गुस्से में उन सबको वार्निंग देते हुए देखकर अनय जल्दी से उसके पास आया। उसने स्टाफ और उन लोगों की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, वो बस थोड़ा सा परेशान है, बस आप लोग जाइए। इस पर जाते हुए स्टाफ में से एक नर्स ने कहा, डॉक्टर बस रास्ते में है, पहुंचने ही वाले हैं, आप प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए। उस नर्स की बात सुनकर आदित्य ने उसे गुस्से में घूर कर देखा। उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए उस नर्स से बोला, हाँ ठीक है, आप जाइए, मैं इसे समझाता हूँ। फिर नर्स वहां से जाते हुए बोली, क्या अजीब पागल आदमी है, इसे खुद ही इलाज की जरूरत है। आदित्य के कानों में भी ये बात पड़ गई। वो दोबारा से उस तरफ अपना चेहरा घुमाने ही वाला था कि तभी अनय ने उसे रोक लिया और कहा, आदित्य यार क्या कर रहा है तू, जरा आराम से, हॉस्पिटल है और फोन पर कहा है ना डॉक्टर आ रहे हैं, वैसे भी अभी 15 मिनट ही हुए हैं उन्हें कॉल किए हुए। डॉक्टर के आने की बात पर आदित्य ने कहा, हाँ तो 15 मिनट भी बहुत होते हैं, क्या 15 घंटे में आएंगे यहाँ पर, और वैसे भी ड्यूटी टाइम है तो डॉक्टर को यहाँ हॉस्पिटल में ही होना चाहिए ना, ऐसे कैसे वो इतने लापरवाह हो सकते हैं, और सुनैना किस तरह बेहोश है और उसकी हालत भी ठीक नहीं थी। आदित्य सच में सुनैना के लिए बहुत परेशान है और अनय ये बात समझ भी रहा है, इसीलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा और उससे कोई भी बहस नहीं की। दूसरी तरफ अक्षत रागिनी का पीछा करते हुए एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में आ गया था। उसने अपना हुलिया बदल रखा था, इस वक्त वो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था। इसके साथ ही वो ब्लूटूथ पर विवान से कनेक्टेड भी था और अपने असिस्टेंट अजय से भी। वो लोग उसकी लोकेशन और पूरी एक्टिविटी पर नजर रखे हुए थे, क्योंकि इस बार अक्षत को खबर मिली थी कि इस वक्त रागिनी अपने उसी पार्टनर से मिलने जाने वाली है जिसके साथ मिलकर ये सब कुछ प्लान कर रही है, इसीलिए वो उसका चुपचाप पीछा करते हुए यहाँ पर आया था और उसे लगता था कि आज तो वो रागिनी को रंगे हाथों पकड़ लेगा और उसका ये खेल खत्म होगा। और इतना सोचते हुए वो भी उसके पीछे ही उस अपार्टमेंट बिल्डिंग में लिफ्ट से उसी फ्लोर पर आ गया जहां पर रागिनी आई हुई थी। फिर उसने देखा कि आगे बढ़ते हुए रागिनी बार बार इधर उधर देख रही है कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। रागिनी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, अक्षत जल्दी से साइड में एक दीवार के पीछे छुप गया। फिर उसने धीरे से अपना सिर निकालकर झांक कर उसे देखा। रागिनी जब तक सामने के उस फ्लैट के अंदर जा चुकी थी और उसके जाते ही फ्लैट का दरवाजा बंद हो गया। शिट, रागिनी को अंदर जाते देखकर ना चाहते हुए भी अक्षत के मुंह से निकला। उसकी आवाज सुनकर कॉल पर कनेक्टेड विवान ने पूछा, क्या हुआ भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? उसकी बात का जवाब देते हुए अक्षत बोला, पता नहीं अभी तो फिलहाल, लेकिन वो घर के अंदर चली गई है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं वहां पर कैसे जाऊं।
इस पर उसके मैनेजर ने एडवाइस दी, सर अगर आपने जगह देख ली है और उसे वहां पर जाते हुए भी देखा है तो आप वापस आ सकते हैं, आगे हम अपने तरीके से पता कर लेंगे कि वहां पर कौन रहता है। इसके अलावा उसके निकलते वक्त भी हम उस पर नजर रख सकते हैं, अक्षत ने उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन मुझे लगता है मुझे नहीं रुकना चाहिए। तो विवान ने कहा, नहीं भाई, अजय सही कह रहा है, आपका वहां पर रुकना ठीक नहीं है। अगर किसी ने भी आपको पहचान लिया तो फिर रागिनी और उसका जो भी पार्टनर है वो दोनों ही अलर्ट हो जाएंगे। इन दोनों के समझाने पर उनकी बात समझते हुए इस बार अक्षत ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं वापस आता हूँ। इतना बोलते हुए वो वहां से निकल ही रहा था कि तभी सामने से आते हुए किसी से टकरा गया। वो एक लड़की थी। उससे टकराते ही अक्षत के हाथ में पकड़े हुए उसके सनग्लासेस नीचे गिर गए, जो कि वो बस लगाने ही वाला था जब उस लड़की से टकराया। जैसे ही वो दोनों आपस में टकराए वैसे ही वो लड़की बोली, आई एम रियली सॉरी, इट्स ऑल माई फॉल्ट, आई वॉज टॉकिंग ऑन फोन। अक्षत ने नीचे झुके हुए अपने सनग्लासेस उठाते हुए कहा, इट्स टोटली फाइन। और इतना बोलते हुए वो सीधे खड़े होकर अपने सनग्लासेस लगाने लगा। तभी उस लड़की ने रुककर उसे काफी ध्यान से देखा और एकदम से एक्साइटेड होती हुई थोड़ी तेज आवाज में बोली, ओ माय गॉड, अक्षत तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इस तरह के लुक में। उस लड़की की आवाज सुनकर अक्षत भी एक पल के लिए रुक गया। फिर उसने नजर उठाकर उस लड़की की तरफ देखा। वो और कोई नहीं बल्कि श्वेता थी और वो इतने टाइम से उसे जानती है, इसीलिए ही वो अक्षत को ऐसे गेटअप में भी पहचान गई। उसकी इस तरह से एक्साइटेड होकर चिल्लाते ही अक्षत ने उसे चुप रहने का इशारा किया और कहा, श्वेता प्लीज प्लीज मेरा नाम मत लो ऐसे यहाँ इस तरह से। और इतना बोलते हुए वो उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उस साइड में ले गया। उसके साथ आते जाते हुए श्वेता ने कहा, ओके बट तुम यहाँ पर किसी मीटिंग के लिए आए हो क्या, और इस तरह का लुक है? वैसे मैंने सुना तो था सुपरस्टार ऐसे गेटअप चेंज करके पब्लिक में घूमते हैं, बट मुझे भरोसा नहीं होता था, और आज तो मैंने देख भी लिया। वाओ, मैं तो सच में तुम्हें पहचान नहीं पाती अगर तुमने ये सनग्लासेस भी अपने फेस पर लगाए होते तो। इस पर अक्षत ने काफी ठंडेपन से कहा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इतना एक्साइटेड होने वाली बात नहीं है, मैं बस किसी जरूरी काम से आया था और अब वापस ही जा रहा था। श्वेता, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्रमशः